हरे कृष्णा। तो आज हम इस 6 सत्र कार्यक्रम के अंतिम सत्र में हैं, जिसमें कृष्ण भावनामृत यानी भगवद गीता का, भगवान कृष्ण का जो संदेश है, जो शास्त्रों का सार है, उसे व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में कैसे अपनाना है, क्या करना है। जैसे स्कूल में होता है, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो अभी तक हमने काफी थ्योरी सुना है पिछले 5 दिनों में, और आज उस सब थ्योरी को जानने के बाद व्यवहारिकता में कैसे लाना है, अपने जीवन में क्या क्या कैसे कैसे अपनाना है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और जिससे आशा है कि आप आज के बाद से उसको प्रारंभ करेंगे अपने जीवन में। जो लोग करते हैं ऑलरेडी, वो लोग और अच्छे से करेंगे, और जो अभी प्रारंभ नहीं किए हैं वो अगर संतुष्ट होंगे, उन्हें कुछ यहाँ से अच्छा लगेगा, सीखा होगा, तो वो अपने जीवन में उसे आज से अपनाएंगे, और इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे अपने जीवन की शुरू करेंगे। तो कल की कक्षा में हमने विधि के ऊपर चर्चा की, भगवत धाम या परम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि के ऊपर चर्चा की, जिसमें हमने देखा कि बद्ध अवस्था में हमारे 2 स्तर पे स्वधर्म होते हैं। जब तक हम इस शरीर से बंधे हैं, शरीर की आवश्यकताओं से बंधे हैं, तब तक इन शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियत कर्म हैं, जो वर्ण, अलग अलग वर्ण और आश्रम के अनुसार होते हैं। पर ये केवल शरीर तक ही सीमित हैं और शरीर के हमारे साथ जुड़े रहने तक ही सीमित हैं। ये आत्मा के स्वधर्म नहीं है, ये इसलिए नित्य नहीं है। नित्य धर्म तो आत्मा के स्तर पर है, क्योंकि आत्मा ही नित्य है, आत्मा का ही भगवान के साथ नित्य संबंध है। ये शरीर तो केवल एक यंत्र के रूप में इस समय हमें मिला है, भगवत धाम जाने की यात्रा करने के लिए यंत्र मिला है। तो आत्मा के नित्य धर्म भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा है, जो आध्यात्मिक जगत में हम जाकर के करेंगे, जो हमेशा से हो रही है, जो वहां आध्यात्मिक जगत में मुक्त आत्माएं हैं, जो आध्यात्मिक जगत में मुक्त आत्माएं हैं, वो नित्य रूप से उसे कर रही हैं, उसे भक्ति कहते हैं। तो ये हमने देखा, और आज इस विषय पर थोड़ा सा और चर्चा करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकली क्या क्या करना है उसके ऊपर देखेंगे। तो विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता में सभी प्रकार की योग पद्धतियों को समझाया गया है। यह शब्द जो है योग, सब ने इसको सुना है, और सबकी, विशेष रूप से भारत भूमि में तो सबकी नहीं, लेकिन काफी लोगों की इसमें रुचि भी रहती है कि हम योग सीखें, योग जानें, और अनेक अनेक योग शिविर चलते रहते हैं। थोड़ा चर्चा हम आज करेंगे कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है, योग की जो अलग अलग पद्धतियां हैं उसमें क्या संबंध है, सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति क्या है। तो योग का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़ना। योग उस पद्धति को कहते हैं जिससे आत्मा को भगवान के साथ जोड़ा जा सके। जैसा हम अभी तक देख चुके हैं, हम सभी जो आत्मा हैं, अलग अलग व्यष्टि आत्माएं, हम सभी का भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। जिसे हम वर्तमान में भूल गए हैं। इसी अपने संबंध को पुनर्जागृत करना, इस पद्धति को योग कहते हैं। योग मात्र शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए नहीं है, वो किसी योग क्रिया से उसका यह फल प्राप्त होता है कि स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर भी अच्छा रहता है या मन को शांति मिलती है, वो सही है, पर यह योग का हेतु नहीं है। तो आजकल सामान्यतः योग का मतलब समझा जाता है कुछ आसन, कुछ इस प्रकार के क्रियाएं, योग आसन, जिनसे हम शरीर को अच्छा रख सकें और मस्तिष्क को शांत रख सकें, शांति बनाए रख सकें। लेकिन वास्तव में ये योग का हेतु नहीं है, ये उसका साइड इफेक्ट है, ये सेकेंडरी इफेक्ट है। ये योग की क्रिया से अपने आप मिलने वाला फल है, पर योग का ये हेतु नहीं है, पर्पस नहीं है। योग का हेतु तो आत्मा को वापस उसकी स्वाभाविक स्थिति, भगवान के साथ जो उसका संबंध है, वो पुनर्स्थापित करने के लिए योग है। तो अलग अलग प्रकार की जो योग पद्धतियां शास्त्र में वर्णित हैं, उन सभी का यही लक्ष्य है। इसीलिए जैसे हम अष्टांग योग बहु प्रचलित है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि के द्वारा, तो हम वहां पर योग सीखते हैं जाकर के, अपने शरीर को हष्टपुष्ट रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उस हष्टपुष्ट शरीर से, मजबूत शरीर से और अधिक इस भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए इंद्रिय भोग करते हैं, जो कि बिल्कुल योग के हेतु से उल्टा है। योग अंतिम रूप में जो प्रत्याहार जिसे हम बोलते हैं, वो है अपने को इन इंद्रिय भोग की आसक्ति से दूर करना। लेकिन जो व्यक्ति योग के वास्तविक हेतु को नहीं जानते हैं और केवल उसे शरीर को या मन को स्वस्थ रखने का एक जरिया समझते हैं, तो अंतिम परिणाम क्या होता है, हष्टपुष्ट शरीर से हम इंद्रिय भोग में अधिक से अधिक लिप्त होते रहते हैं, इसी भौतिक जगत में आसक्त रहते हैं, जो कि योग के वास्तविक हेतु के बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए वो योग पद्धति वास्तविक योग पद्धति नहीं कहलाई जा सकती। इसलिए बहुत स्पष्टता समझना चाहिए कि योग का वास्तविक हेतु तो हमारा आत्मा का भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, और जैसे जैसे हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं, स्वाभाविक रूप से ये जो शरीर है ये स्वतः अपने आप अच्छे से कार्य करता है। तो ये उसका सेकेंडरी इफेक्ट है। अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति तो होगी। मन की शांति, मन अशांत कैसे होता है, कई बार हमसे प्रश्न सबके ये रहते हैं, मन को कैसे शांत किया जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, मन को कैसे शांत किया जाए, सबका ये बड़ा प्रश्न है, मन को कैसे शांत किया जाए। तो शास्त्र में बताया गया है कि मन की अशांति का कारण क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो लोग भुक्ति यानी इंद्रिय भोग की कामना में लिप्त हैं, या मुक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मात्र निकलकर ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा कर रहे हैं, या सिद्धि योग से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जगत को वश में करना चाहते हैं, दूसरों को वश में करना चाहते हैं, कुछ योगी सिद्धि प्राप्त करके प्रतिष्ठा चाहते हैं, ये तीनों प्रकार के लोग भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये तीनों जो इच्छा रखते हैं, सकल अशांत, वो सब अशांत हैं, अशांत रहेंगे। तो फिर कौन शांत रह सकता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वास्तव में केवल कृष्ण भक्त ही निष्काम है और इसीलिए वही वास्तव में शांत रह सकता है, बाकी सब भौतिक इच्छाएं हैं। भुक्ति से अच्छा है मुक्ति, मुक्ति कामना भौतिक से अच्छी है, पर वो भी एक इच्छा है। ब्रह्म में विलीन हो जाना ये भी एक इच्छा है, भगवान में ही विलीन हो जाना ये भी एक इच्छा है। ये भी हमारा स्वरूप नहीं है, ये भी हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये भी परम स्थिति नहीं है। और सिद्धि कामना, अष्ट प्रकार की सिद्धियां, सोना बना देना, विभूति बना देना, दूसरे की मन की बात पढ़ लेना, एक ही समय पर कई जगह पर उपस्थित हो जाना, किसी के सपने में आ जाना, ये सब सिद्धियां हैं, योगिक सिद्धियां। तो जो इन तीनों के पीछे भाग रहे हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, उनका मन अशांत रहेगा ही। तो मन को शांत करने के लिए टैबलेट नहीं मिलेगी कि महाराज कोई टैबलेट दे दो बस टैबलेट सटक जाए और कल सुबह उठे तो मन शांत हो गया। मन को शांत करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन बोले हैं मन को शांत करना वायु को कंट्रोल, वायु को नियमन करने से भी अधिक मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, मन का नियमन करना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महाराज कुछ एक मंत्र दे देंगे और बस वो मंत्र हम करेंगे 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह और बस फिर हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत करने के लिए जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि आप कौन हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये मन अशांत रहेगा ही। जब तक ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि में से कोई भी कामना है तब तक मन अशांत रहेगा ही। केवल कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि जो कृष्ण भक्त है वही निष्काम होता है। निष्काम क्यों होता है, उसे निष्काम क्यों कहते हैं? तो वो निष्काम इसलिए है क्योंकि उसकी एक ही कामना है। तो आप कहेंगे निष्काम है और एक ही कामना है, इसका क्या मतलब है? एक तरफ कह रहे हैं निष्काम है और एक तरफ कह रहे हैं एक ही कामना है। निष्काम का मतलब कामना रहित, और हम जब कह रहे हैं एक ही कामना है तो मतलब उसकी कोई कामना हो गई। यस, जीव कभी वास्तव में पूरी तरह से इच्छा रहित हो ही नहीं सकता। वो जीव का गुण नहीं है, वो अचेतन चीज का गुण है, ये पत्थर का गुण है। इच्छा रहित होना, क्रिया रहित होना, ये जड़ चीज का गुण है ना कि चेतन चीज का। इसीलिए आत्मा के लिए निष्कामता का अर्थ है केवल एकमात्र एक कामना, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की कामना। ये कामना होना ही निष्कामता है, और इस कामना के अलावा अन्य कोई भी कामना होना वो भौतिक कामना होती है। इसलिए शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा दी जाती है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्य सभी प्रकार की अभिलाषाएं जब शून्य हो जाएं, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषाएं, कर्म में सिद्धि प्राप्त करने की अभिलाषाएं इत्यादि इत्यादि, मुक्ति भुक्ति सब जब शेष हो जाएं, जब खत्म हो जाएं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम, केवल एक ही कामना एक ही क्रिया रह जाए, भगवान की अनुकूल रूप में भक्ति सेवा, उनको प्रसन्न करने की इच्छा, तब उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। इस स्थिति में वास्तव में हमारा मन केवल शांत हो सकता है। तो योग भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने की विधि है, ना कि सस्ता इस शरीर को हष्टपुष्ट रखने की विधि है या मन को केवल मात्र बस भौतिक तरीके से शांत करने की विधि है। तो हम इस योग के ऊपर चर्चा करें तो कई प्रकार के योगी आपने सुने होंगे, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या हठ योगी या ध्यान योगी जिन्हें कहते हैं, और भक्ति योगी। विशेष रूप से सभी प्रकार की योगी प्रणालियों में ये 4 भाग हैं योगियों के, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग हठ या ध्यान योगी जो एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और भक्ति योगी। तो ये 4 प्रकार के योगियों में क्या संबंध है? वास्तव में योग एक सीढ़ी की तरह से है। जैसे हम एक सीढ़ी देखते हैं, उस सीढ़ी में अलग अलग पाए होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और उस सीढ़ी के माध्यम से हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं, सबसे ऊपर का पाया। तो ये जो अलग अलग योग पद्धतियां हैं वो अलग अलग मार्ग नहीं है, जो अलग अलग मार्ग एक ही जगह पहुंचते हैं, ऐसा बहु प्रचलित मत है। वास्तव में वो एक ही सीढ़ी के अलग अलग चरण हैं। इसका पूरा विवरण श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सिस्टमेटिकली भगवान ने किया है। प्रथम अध्याय से 6 अध्याय तक भगवान ने इस सीढ़ी का वर्णन किया है कि प्रथम स्तर की सीढ़ी कौन सी है, उसके ऊपर की सीढ़ी कौन सी है, उसके ऊपर की सीढ़ी कौन सी है, उसके ऊपर की सीढ़ी कौन सी है, और परम सीढ़ी कौन सी है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे कि सीढ़ी में कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स हैं। तो अधिकतर लोग तो कर्मी हैं इस भौतिक जगत में। कर्मी यानी कि जो कर्म करते हैं और उसके पीछे भौतिक कामनाएं उनकी होती हैं, कोई आध्यात्मिक रुचि उनके जीवन में नहीं होती, उनका लक्ष्य कोई आध्यात्मिक नहीं होता, उनका जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होता है खाओ पियो मौज करो, इन्हें कहते हैं कर्मी। भगवान में विश्वास नहीं रखते, शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते, अपने को बहुत अहंकारी रूप से महान समझते हैं, हर कुछ अपने हाथ में समझते हैं, इन्हें कर्मी कहते हैं। ऐसे लोग कभी सत्संग में नहीं आते, भगवद्गीता का पाठ इत्यादि सुनने में रुचि नहीं होती है, खाना पीना मौज करना इसी में उनकी रुचि होती है। ये जानवरों जैसे ही माने जाते हैं, अधिक श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जानवर भी यही करते हैं। इनसे एक स्टेप ऊपर है कर्मकांडी। ये वो लोग हैं जिनकी शास्त्र में श्रद्धा है, जिनकी भगवान में एक श्रद्धा है कि यहां एक परम शक्ति कोई है, पता नहीं है कौन है पर कोई ना कोई शक्ति है, इतना जानते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है ये जानते हैं, पर वो भी पूरी तरह से उनका जीवन का लक्ष्य वही है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति, भगवान की सेवा या भगवत प्राप्ति, ऐसा कोई लक्ष्य उनका नहीं है। वो केवल भगवान को क्या मानते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही भगवान है। इसलिए वो शास्त्र के निर्देशों का पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, किस हेतु से, अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से। मंदिर में जाते हैं किस लिए, लिस्ट लेकर के, भगवान ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए। उनके लिए मंदिर का एक ही हेतु है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना। भगवान क्यों वहां है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यज्ञ किससे बनाए गए हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी केंद्र फोकस अपनी इंद्रियों पर है, इंद्रिय संतुष्टि पर। लेकिन भगवान से मांगते हैं, जानते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है, भगवान हमारे ऊपर है, भगवान से मांगते हैं, इन्हें कर्मकांडी कहते हैं। इनसे ऊपर वो लोग हैं जो ये कर्मकांड के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के भोग करते हुए इस भौतिक जगत में या तो स्वर्ग लोकों में अनेक अनेक प्रकार से भोग करते हुए अभी निराश हो गए हैं, और संतों के द्वारा उन्होंने सुना है कि ये स्वर्ग में जाओ कि नरक में जाओ, जितने भी भौतिक भोग हैं अंतिम रूप में क्षणिक हैं, और हम ये क्षणिक आनंदों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, ये वो अभी समझने लगे हैं। इसलिए और अभी वो सुने हैं कि वास्तव में हमारे मनुष्य जीवन का या जीव की अंतिम गति है वो जो परम शक्ति है, वो जो भगवान है, उन तक पहुंचना, ये उनको जानकारी हो गई है। जिस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य ये निश्चित हो गया है उसे योगी कहते हैं। यहां से योग प्रारंभ होता है, ये योग की पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है भगवान, परमात्मा, जिस भी नाम से कहें, क्योंकि उसे अभी क्लियर नहीं है कि कौन है, पर वो जानता है एक परम शक्ति कोई है, वहां तक पहुंचना जिसका लक्ष्य है वो व्यक्ति योगी कहलाता है। यहां से उसकी योगा सीढ़ी शुरू हुई, सीढ़ी चढ़ना शुरू किया उसने अभी। इसमें सबसे पहला प्रगत या सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला स्टेप है कर्म योगी। ये वो व्यक्ति है जिसको लक्ष्य तो पता लग गया है पर अभी भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, अभी भी उसकी कर्मों के और कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों में सुनकर के, संतों के द्वारा सुनकर के अपना कर्म करता है और उस कर्म के फल का कुछ भाग का त्याग करता है, हॉस्पिटल खुलवाता है, अनाथ आश्रम में देता है, गरीबों को दान देता है, इस प्रकार से वो अपनी कमाई, परिश्रम की कमाई को खुद नहीं भोगता बल्कि उसका त्याग करता है। किसके लिए, वो परम शक्ति के नाम पर, कि वो जो परमात्मा है उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये त्याग कर रहा हूं। इसे सकाम कर्म योगी कहते हैं। उसकी अपनी कामनाएं भी हैं अभी, पर धीरे धीरे अभी वो अपने कर्म के फलों को त्याग करना शुरू करता है। सकाम कर्म योगी आगे बढ़ता है, निष्काम कर्म योगी बन जाता है। जब धीरे धीरे अपने कर्म के फलों को त्यागने से उसकी कर्म के फलों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, इसे निष्काम कर्म योगी कहते हैं। अभी भी उसकी कर्म करने के प्रति आसक्ति है, उसे एक प्रकार का कर्म करने के प्रति आसक्ति है पर कर्म के फलों के प्रति आसक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से अपने गाढ़ी कमाई को दान देता है और केवल शरीर के लिए जितना जरूरी है केवल उतना ही प्रयोग में लाता है, उसे निष्काम कर्मयोगी कहते हैं। इस प्रकार का निष्काम कर्मयोगी आगे चल करके उसे ज्ञान मिलता है, ये परिणाम है निष्काम कर्म योग का, ज्ञान की प्राप्ति। उसे ज्ञान होता है सर्व खल इद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये उसको ज्ञान होता है, एक ब्रह्म ज्योति है, जहां हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके उस ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं, जहां फिर दोबारा से जन्म मृत्यु नहीं होगा, अभी उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं, ज्ञान योगी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के योगी आते हैं, ज्ञान मीन्स बेसिकली पूरे आध्यात्मवादी में दो प्रकार के हैं, एक निराकारवादी और एक साकारवादी। तो अभी हम जिसका वर्णन कर रहे हैं वो निराकारवादियों का कर रहे हैं, जो परम सत्य को ब्रह्म मानते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति मानते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, या जो परमात्मा मानते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। और जो साकारवादी हैं वो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ये साकारवादी हैं। तो दोनों का लक्ष्य अलग अलग रहता है, वो हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे आगे, लेकिन इस प्रकार से दोनों की प्रगति हो रही है। तो इस प्रकार से ज्ञान योगी अपने ज्ञान के बल पर कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस तरह से धीरे धीरे कर्म के प्रति आसक्ति, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके यदि वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्म में विलीन हो सकता है, उस पर ब्रह्म में विलीन हो सकता है, शरीर त्यागने के बाद ब्रह्म में विलीन हो सकता है। इसी में से कुछ लोग ज्ञान योगी आगे चल करके अपने ज्ञान के बल पर और फिर ध्यान करना शुरू करते हैं, अष्टांग योग प्रारंभ करते हैं, वो ब्रह्म पर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं या तो परमात्मा पर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, यम नियम यहां से प्रारंभ करते हैं। इसका उल्लेख भगवद्गीता के छठे अध्याय में इस प्रणाली का हुआ है कि एक स्वच्छ स्थान में आसन बिछाकर उसके ऊपर सीधे बैठकर गर्दन इत्यादि सीधी रख करके फिर वो यम नियम आसन इत्यादि की क्रिया से अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उस निराकार ब्रह्म के ऊपर, और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे इस भौतिक जगत से पूरी तरह से अनासक्त होकर के ध्यान धारण समाधि समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। ऐसे योगी जब अपनी पराकाष्ठा पर सिद्धि पहुंचते हैं तो वो लोग ब्रह्म में विलीन होते हैं, और अगर परमात्मा का चिंतन करते हैं तो परमात्मा का दर्शन करके ब्रह्म में विलीन होते हैं। तो ये उनकी गति है। तो ये एक सीढ़ी है जिसका हेतु है कि हम एक सीढ़ी से एक पैर रखें और फिर दूसरे पैर दूसरे चरण पर जाएं और फिर दूसरा छोड़कर के तीसरे चरण पर जाएं और फिर ऊपर जाएं, जिसमें कि जो अंतिम सीढ़ी है, जो ब्रह्म से भी ऊपर की सीढ़ी है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की से भी ऊपर की सीढ़ी है, वो है भगवान के दिव्य स्वरूप की, आत्मा के दिव्य स्वरूप के द्वारा भक्ति सेवा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि ये बहुत एक साधारण विचार सब लोगों में प्रचारित है कि अंततः निराकार ब्रह्म ही परम है, परम स्तर है निराकार ब्रह्म, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसको ऐसा नहीं मानते हैं। 12वें अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, जो मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, निराकारवादी साकारवादी, दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यह 12वां अध्याय का प्रथम श्लोक है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए। तो स्पष्ट अर्जुन वही प्रश्न कर रहे हैं जो आज हम कर रहे हैं कि किसे अधिक सिद्ध माना जाए, किसे श्रेष्ठ माना जाए, जो आपके साकार रूप जो कृष्ण बोल रहे हैं देवकी नंदन अर्जुन को आपकी पूजा करते हैं उनको, या जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं उनको। श्री भगवान ने कहा, दूसरा श्लोक, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो ये भगवान का कंक्लूजन है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का, कि जो लोग मेरे साकार रूप का चिंतन करते हुए मेरी भक्ति सेवा करते हैं वो मेरे द्वारा अधिक सिद्ध माने जाते हैं, श्रेष्ठतम माने जाते हैं। और आगे बताते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अंतिम सोपान उन लोगों के लिए भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा प्राप्त करना है। फिर आगे बता रहे हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हालांकि अंतिम गति दोनों की वही है क्योंकि वही परम स्तर है, पर जो निराकार तक पहुंच करके फिर भगवान की तरफ जाते हैं उनका मार्ग कष्टप्रद है, मुश्किल है। ये भगवान का यहां वचन है। इस विषय में अनेक अनेक तरीके से भगवान बार बार भगवद गीता में समझा रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में विलीन होना ही परम स्तर नहीं है। वो भी संभावना है पर वो परम स्तर नहीं है। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, बता रहे हैं पूरे भगवदगीता का सार जब कर रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते प्राम। ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचने के बाद, ब्रह्मभूत अवस्था यानी ब्रह्म के अंदर विलीन होने की अवस्था, इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होकर तीनों गुणों से ऊपर होकर के उस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है, गुणातीत होकर जो अवस्था होती है। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था जिसके लक्षण क्या क्या है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा पूरी तरह से वो प्रसन्न हो जाता है, न शोचती न कांक्षती, न किसी चीज का शोक करता है न किसी चीज कामना करता है। समा सर्वेषु भूतेषु सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, इसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं इस ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचने के बाद मद भक्ति लभते पराम, मेरी शुद्ध भक्ति पराभक्ति प्राप्त करता है, लभते प्राप्त करता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंचने के बाद तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। इसी के अगले श्लोक में भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावानाश्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतः ज्ञात्वा विशन्ते तदनंतरम। इस प्रकार केवल भक्ति से ही मुझे तत्वतः पूर्ण रूप में जाना जा सकता है और ऐसा जान करके मेरे धाम आया जा सकता है। तो जो भगवत धाम है, आध्यात्मिक जगत है, वो निराकार इस ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह ब्रह्म ज्योति क्या है? आध्यात्मिक लोकों से निकलने वाला प्रकाश है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसमें सभी वैकुंठ लोग तैर रहे हैं। वहां सूरज नहीं होता है, वहां ब्रह्म ज्योति होता है। तो ब्रह्म ज्योति उन लोकों से, दिव्य लोकों से निकलने वाला प्रकाश है। तो वो लोग उसके ऊपर वैकुंठ लोग हैं अलग अलग, और उसमें सर्वोच्च गोलोक धाम है। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में स्पष्ट ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान के लोक का वर्णन कर रहे हैं कि जहां भगवान सुरभि अभिपालयंतम, जहां गाय को खिला रहे हैं, चरा रहे हैं, वहां अनेक सभी चिंतामणि प्रकर सद मसु, वहां हर चीज चिंतामणि की बनी है, हर चीज चेतन है वहां। कल्प वृक्षावृतेषु लक्षावृतेषु, जो कल्प वहां लाखों की संख्या में कल्प वृक्ष हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, एक ही वृक्ष जो भी आप मांगे वो दे सकते हैं। ये सब विवरण ब्रह्म संहिता में दिया गया है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जहां लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान जी की सेवा कर रही हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद जो वहां रहते हैं उनका मैं भजन करता हूं। ऐसे अनेक अनेक श्लोक हैं। फिर भगवान भगवद गीता में स्वयं बताते हैं भक्त्या तु अनन्य शक्या एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतपः। केवल भक्ति से एकमात्र मुझे तत्वतः जान सकते हो और जानने के बाद मेरे धाम आ सकते हो। तो भगवत धाम जाना जो ब्रह्म ज्योति के का ब्रह्म ज्योति जिसका प्रकाश है, उसके लिए केवल भक्ति मार्ग से जाया जा सकता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने पर ही वहां जाया जा सकता है। भगवान अपने इस धाम के बारे में कई बार विवरण दिए हैं इस पूरी भगवद गीता में। भगवान बताए हैं अव्यक्तम अक्षरम इति युक्तः तम आहु परमां गतिम यद लब्ध्वान यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अव्यक्त जो हमारी भौतिक दृष्टि में व्यक्त नहीं है, अक्षरम जो कभी इस भौतिक माया के प्रभाव में नहीं आता, अव्यक्त अक्षरम तम आहु, ऐसा कहे जाने वाला अव्यक्त अक्षर तम आहु परमाम गति, जिसे परम गति माना जाता है, जिसे प्राप्त करने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आया जाता, तद्धामं परमं मम, वो मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण यहां साकार रूप में कह रहे हैं कि वो मेरा धाम है, अव्यक्त अक्षर जिसे कहते हैं वो मेरा धाम है, जहां जाने के बाद यहां नहीं आ जाता। न तद भासते सूर्य न शशांको न पाव कहा, वहां सूरज नहीं चंद्रमा नहीं आवश्यकता नहीं है, हर चीज स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे धाम का विवरण अनेक अनेक श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। तो ये धाम कल्पनिक नहीं, काल्पनिक नहीं है, ये सब काल्पनिक नहीं है, भगवान का श्री विग्रह का रूप काल्पनिक नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इसका विवरण, सच्चिदानंद विग्रह व्यास देव जी भागवतम में कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का विग्रह है वो सच्चिद आनंद है, उनका रूप है सच्चिदानंद है। फिर कई लोग ऐसा मानते हैं कि ठीक है कृष्ण भगवान आए तो थे, वो तो हमको पता है, विश्वास करते हैं भगवान आए थे, पर जब भगवान इस भौतिक जगत में आए थे तो एक माया सृजित रूप लेकर के आए थे, निराकार से आए थे, ये मानते हैं। जब राम और कृष्ण आते हैं निराकार में से एक रूप लेकर के आते हैं और फिर वापस निराकार में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमको भी निराकार में विलीन हो जाना है। हम देखते हैं कि भगवान इस विषय में क्या कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। भगवान कहते हैं जो लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त से मैं व्यक्ति रूप में आया, यानी निराकार से साकार रूप में आया, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मन्यन्ते माम अबुद्धयः, कम बुद्धिमान लोग हैं वो लोग जैसा सोचते हैं कि मैं निराकार से साकार रूप में आया हूं। परम भाव अजानन्तो, वे मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते हैं। मम अव्ययम्, मैं अव्यय हूं, अनुत्तमम्, इन भौतिक प्रकृति के परे हूं। फिर भगवान बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, अवजानंती नहीं जानते हैं माम मुझे, मूढ़ा मूर्ख लोग, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, जब मैं इस भौतिक जगत में मनुष्य आकृति में आता हूं तो लोग वो मुझे अवजानंती माम मूढ़ा, मुझे नहीं जान पाते हैं, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो, मेरे ये सोचते हैं कि ये मनुष्य का एक साधारण मनुष्य आ गया है, वो नहीं जानते हैं कि ये दिव्य स्वरूप है, ये भौतिक तत्वों का नहीं बना है। जब भगवान श्री कृष्ण यहां आते हैं वो भौतिक तत्वों का शरीर लेकर के नहीं आते हैं, जैसे हमने उस दिन वर्णन किया था, जन्म से ही चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रति अवतरित होते हैं और उनके सब क्रियाकलाप हम देखें, 6 महीने पूतना का वध करते हैं, स्पष्ट है भगवान कोई भौतिक शरीर लेकर के आए और योग साधना से अपने को सिद्ध किए, ऐसा कहीं हम पढ़ते ही नहीं है, पहले दिन से योगेश्वर हैं। तो भगवान का जो शरीर है, जब भगवान आते हैं भगवान बताते हैं, संभवामी आत्ममाया, मैं अपनी माया शक्ति में आता हूं, ये बहिरंगा शक्ति का धारण करके नहीं आता हूं जैसे हम आए हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे एक जेल है, जेल के अंदर कैदी है और जेल का एक सुपरिंटेंडेंट है, एक ऑफिसर है जेल का। अगर मान लीजिए कभी वो जेल का सुपरिंटेंडेंट कभी जेल के अंदर जाए कैदियों का हालचाल देखने के लिए और बाकी कैदी सोचने लगे, अरे हम भी जेल के अंदर हैं और ये सुपरिंटेंडेंट भी जेल के अंदर है, हम सब एक हो गए, हम भी कैदी ये भी कैदी, तो वो अबुद्धया, वो जानता नहीं है कि ये सुपरिंटेंडेंट जो यहां इस जेल के अंदर है वो कैदी की तरह से नहीं है, वो अपनी इच्छा से आया है और अपनी इच्छा से जाएगा, पर कैदी ना तो अपनी इच्छा से आता है ना तो अपनी इच्छा से जा सकता है, ये डिफरेंस है, ये दोनों में भिन्नता है। उसी प्रकार से भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं हमें लगता है ये भी हमारी तरह ही आए हैं, हमें लगता है भगवान भी जन्म लेते हैं, देव के गर्भ से आए और उसके शिकारी के मारे जाने से चले गए। लेकिन हम इसका विवरण यदि शास्त्रों में देखें, भक्तों के माध्यम सुने, ये एक ड्रामा है, लीला है, इस सब का विवरण हम, अभी समय कम है इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, पर इस सब का विवरण हम देख सकते हैं कि वो लीला है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। जब देव के घर में आए उससे पहले से भविष्यवाणी थी कि भगवान आने वाले हैं, सब देवतागण इकट्ठा हो गए इनका दर्शन करने के लिए। हमारे जन्म में ऐसा होता है? हम सब रोते हुए नंगे हड्डी मांस का शरीर लेकर के आते हैं, कोई आया है चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ, और जब शिकारी तीर मारता है क्षमा मांगता है, भगवान कहते हैं ये मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि अब यहां से जाना है, ड्रामा को खत्म करने के लिए कोई ना कोई तो एक एक्शन बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम यो एवं व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माम इति स्वर्जुना। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे जन्म कर्म भौतिक हैं, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, वो हमारी तरह से नहीं है। कैसे? भगवान कह रहे हैं जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो दिव्य है। हमारे जन्म कर्म जानने से किसी की जन्म मृत्यु का मुक्ति होगी? पर भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म जो जान लेता है कि वो दिव्य है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जिसके जन्म कर्म जान लेने से हमारी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए, क्या उसके जन्म कर्म माया से प्रभावित होंगे? तो ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अव्यय, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है, उसका कभी व्यय नहीं होता है, वो बदलता नहीं है, वो साक्षात अपने दिव्य स्वरूप में यहां आए थे, आते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण अपने साक्षात अपने स्वाभाविक स्वरूप में आते हैं और उसी स्वरूप में जाते हैं, इसका विवरण भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवत धाम है वो एक वास्तविकता है, वो काल्पनिकता नहीं है, और ब्रह्म ज्योति उससे निकलने वाला प्रकाश है। लेकिन जैसे हमने बताया था, तीन प्रकार के स्तर पर परम सत्य को जान सकते हैं, ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और भगवान। जो भगवान स्तर पर को समझता है वो तीनों स्तर को समझ गया है, लेकिन जो ब्रह्म स्तर को समझा है वो परम सत्य को ही समझा है पर पूर्ण रूप से नहीं समझा है, वो केवल प्रकाश को देख करके भ्रमित हो गया है। जैसा कि उपनिषद में बताया गया है, ईशोपनिषद में तत्त्वम पूषण अपावरणु, ये जो आपसे आपके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है कृपया इसे हटाइए जिससे मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जैसे रात में हम देखें कोई गाड़ी आती है और उसकी हेडलाइट इतनी तेज होती है कि उसकी हेडलाइट के पीछे जो गाड़ी है उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें चौंधे आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से ये वो लोग हैं जिनकी आंखें उस ब्रह्म ज्योति से चौंधिया गई हैं, जो उस ब्रह्म ज्योति के स्रोत भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं, उनको इसलिए उसका पता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं विवरण शास्त्रों में, अनेक अनेक ऐसे महान महान संत हुए हैं जो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में लीन होने की स्थिति में थे, और जब उनको भगवान के भक्तों का संग हुआ तब वो अपने इस निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके भगवान की भक्ति में आ गए। खुद सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुनाए हैं वो पहले निराकारवादी थे, निराकार का चिंतन करते थे, पर जब उन्होंने भगवान के भक्तों से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुना तो निराकार चिंतन को छोड़कर भगवान की शुद्ध भक्ति में चले गए। उसी प्रकार से चार कुमार, ये भी ब्रह्मवादी, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये समझना चाहिए कि ब्रह्म में लीन होना सर्वस्तर नहीं है, और वास्तव में आत्मा कभी भी ब्रह्म में लीन होकर हमेशा हमेशा कहीं नहीं रह सकती। बहुत बहुत समय तक वहां रहने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना होगा, ये शास्त्र का विधान है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, शास्त्र में भागवतम में ब्रह्मा जी की स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस आरूर कृष्णेन परम पदम ततः पतंति अदः अनादृत युष्मात अंग्रयः। जो लोग अपने को मुक्त मानते हैं, आपके चरणों का अनादर करते हैं, अपने को ब्रह्म में विलीन होकर मुक्त मानते हैं, आरूर कृष्णेन परम पदम, उस परम पद पर पहुंचने के बाद भी पतंति अदः, वहां से नीचे गिरते हैं, क्योंकि आपके श्री चरणों का अपराध किए हैं, आपके स्वरूप को नहीं मानते हैं। इसलिए क्योंकि हमने देखा जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, किसी न किसी की सेवा तो करनी पड़ेगी, पर ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा का अवसर नहीं है, वहां केवल कण के रूप में एक विराजमान हम रहते हैं, इसलिए वो पूर्ण स्थिति नहीं है। इसलिए वहां से अनेक 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 समय के बाद पुनः आना पड़ता है। जैसे एक पक्षी है, वो पक्षी बंधा हुआ है पिंजड़े में, जब उस पिंजड़े को हम खोलेंगे तो पक्षी उड़ेगा, उसे बहुत आनंद आएगा, अभी वो स्वतंत्र है, उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, पर कहीं ना कहीं तो जाकर के विश्राम करना पड़ेगा, हमेशा तो नहीं उड़ सकता। तो उसी प्रकार हम जब इस समय इस शरीर में बंधे हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलकर उस ब्रह्म में विलीन होना बहुत आनंद आता है। अभी कोई जन्म मृत्यु नहीं है, कोई शरीर नहीं है, बहुत आनंद आता है, लेकिन क्योंकि अभी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं किए, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं किए, इसलिए बहुत समय उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद फिर पुनः इसी भौतिक जगत में कुछ सेवा करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए आना पड़ता है। इसलिए अनेक मायावादी सन्यासी हैं जो कहते हैं कि सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये सब जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है, ऐसा चिंतन करते हैं और फिर बाद में अस्पताल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, क्रियाओं में आ जाते हैं। जब सब कुछ असत्य है तो फिर ये सब क्रियाएं क्यों? क्योंकि बिना सेवा के, बिना क्रिया के जीव बहुत समय तक नहीं रह सकता। तो इसलिए ये स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि भगवान की भक्ति सेवा ब्रह्म में विलीन होने का साधन मात्र नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पूजा करेंगे, हरे कृष्णा भी जपेंगे, सब कुछ करेंगे, पर किस लिए? ब्रह्म में लीन होने के लिए। जब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो ये सब भक्ति भी समाप्त कर देंगे, लॉक कर देंगे भगवान को, सब भूल जाएंगे, मंत्र बोलना सब ये खत्म कर देंगे, क्योंकि जब ब्रह्म में लीन हो गए। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो कभी भगवत धाम नहीं पहुंच सकते और वास्तव में ब्रह्म को भी नहीं पहुंच सकते, ये दूसरा टॉपिक है। तो भगवत धाम जाना ही जीव का परम लक्ष्य है, जहां पर जाकर के भगवान की नित्य सेवा करना है, वही आत्मा को ययात्मा सुप्रसिद्धति, वही हमारा अंतिम गंतव्य है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं इस योगा सीढ़ी में, जो पहले कर्म योग किए, तो जिन लोगों को इस भगवान के नित्य धाम की जानकारी नहीं है, जो केवल ब्रह्म तक जानकारी रखते हैं, वो लोग पहले कर्मयोग, कर्मयोग के बाद ज्ञान और उसके बाद ध्यान और उसके बाद निराकार ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रयास करते हैं। और इस सीढ़ी में जहां कहीं भी उन्हें भगवान के भक्तों का संग हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि परम लक्ष्य तो भगवत धाम जाना है, वो फिर अपने उस मार्ग से निकल करके भक्ति मार्ग अपनाते हैं। तो इस प्रकार से परम लक्ष्य तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। एक जैसे कोई बिल्डिंग होती है ऊंची, तो ऊपर तक जाने के लिए एक सीढ़ियां होती हैं और एक लिफ्ट होती है, दोनों जाती हैं, टॉप तक जा सकती हैं, पर कौन सी ज्यादा अच्छी है, आसान है? लिफ्ट। तो जो ये भक्ति योग है, ये लिफ्ट है। और इस प्रकार से ब्रह्म का चिंतन करना, पहले कर्म योग, उसके बाद फिर ब्रह्म का चिंतन, ज्ञान और फिर चिंतन और फिर ब्रह्म ज्योति और फिर अंत में फिर वहां जा पाए यदि भक्तों का संग हो जाए, तो वो सीढ़ी पे चलने की तरह से है। और भक्ति योग लिफ्ट की तरह से है, जहां पर व्यक्ति समझता है पहले से ही उसका लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवत धाम जाना है, भगवान की सेवा में रत होना है, पहले से ही लक्ष्य निश्चित है। और फिर वो भक्ति का, भक्तिमय कर्मयोग प्रारंभ करता है। वो भी कर्मयोग के स्तर पर होता है, पर वो अपने कर्म का फल भगवान की सेवा में लगाता है और उस प्रकार से निष्काम बनता है। और फिर आकर के उसका मन धीरे धीरे भगवान के चिंतन में लगता है, अधिक से अधिक भगवान के प्रति आसक्ति होती है और फिर भगवत धाम जाता है, जिसका जिक्र हमने कल किया। तो भगवत गीता में भगवान जो हमसे कह रहे हैं, जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो इस लिफ्ट के लिए कह रहे हैं, भक्ति योग के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये सरल है और ये अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने वाला है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, एक सिंपल एक श्लोक है जिसमें पूरी भगवत गीता का सार है। इस श्लोक को हम देखें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या करें। ये सब दर्शन देख लेने के बाद सरलता से समझें कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। यदि श्रद्धा है भगवान के वचनों में, तो इसको सुनकर के अपने जीवन में अपनाएं, भगवत धाम जा सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतानाम यह मामेति स पांडव। मेरे धाम कौन आएगा जो ये चीज करेगा? कौन कौन सी चीज करेगा? सबसे पहली चीज क्या करेगा? मत कर्म कृत, मेरे कर्म को करेगा। मत कर्म कृत भगवान के लिए कार्य करेगा, जिसकी व्याख्या हमने कल भी की कि हम जो भी कार्य करें भगवान के लिए करें, भगवान की संतुष्टि के लिए करें, उसके फलों को भगवान को अर्पित करें, कम से कम पूरा नहीं तो कुछ प्रतिशत। मत कर्म कृत, जैसे हमने कल उदाहरण दिया, रहने के लिए हमें घर की जरूरत है, हाँ, और पैसा है तो घर बनाइए, पर घर का स्वामी भगवान को मानिए, भगवान की सेवा के लिए इस घर का प्रयोग कीजिए, सत्संग के लिए प्रयोग कीजिए और आप भी रहिए। खाने की आवश्यकता है बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद रूप में लीजिए। इस प्रकार से हर अपने कार्य को भगवान से जोड़िए, भगवान संबंधित कीजिए, उसे कहते हैं मत कर्म कृत, मेरे लिए कार्य करना, और किसी के पास धन संपत्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयश्यति। कोई मुझे इस पत्र पुष्प फल जल प्रेम से भक्ति भाव से अर्पित करता है मैं स्वीकार करता हूं। तो कोई कितना गरीब से गरीब हो एक पुष्प तुलसी दल जल तो कहीं से भी ला सकता है और भगवान को अर्पित कर सकता है, भगवान इसी से संतुष्ट हो जा सकते हैं। इसलिए कोई गरीब हो कि अमीर हो सब भगवान के धाम जा सकते हैं, सब भक्ति कर सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो कोई भगवत धाम जा सकता है। निराकार निर्विशेष का चिंतन करने के लिए तपस्वी होना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन, पर यहां केवल भगवान के भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करते, भगवान के नाम का श्रवण करते हुए प्रेम भक्ति भाव से भगवान को जो कुछ भी आपके पास है उसे समर्पित करते हुए आप भगवत धाम जा सकते हैं। इसे कहते हैं मत कर्मकृत। तो जो भी वर्तमान में आपके पास है, जो भी आपकी शक्तियां हैं, जो भी बुद्धि है, जो भी आपके पास है भगवान की संपत्ति समझते हुए उसे भगवान की सेवा में लगाइए, अपने कर्म को भगवान से संबंधित कीजिए। इसे कहते हैं मत कर्मकृत। फिर दूसरा कह रहे हैं मत परमो, मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। दूसरी कंडीशन, दूसरी विधि का दूसरा भाग, अपने जीवन का परम लक्ष्य मेरे धाम आना, मेरी भक्ति सेवा करना, इसे जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। मत परमो, निराकार में जाना, देवी देवताओं के धाम में जाना, भगवद गीता में उसकी संस्तुति नहीं हुई है, वो एक अलग विषय है जिसके हमने अधिक चर्चा नहीं कर पाए हैं कि सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के अंग हैं और भगवान भगवद गीता में चाहते हैं अनन्य भक्ति, जिनसे सभी देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो सब उनके सेवक हैं। तो भगवान चाहते हैं मत परमो, अपना परम लक्ष्य श्री कृष्ण को बनाओ, अन्य किसी ना तो व्यक्ति को, ना तो किसी देवी देवता को, ना तो ब्रह्म को, भगवान श्री कृष्ण को मत परमो। मत भक्त, मेरे भक्त बनो। तो मेरे भक्त बनने का मतलब क्या है? तो भक्ति मतलब होता है एक भक्त है, भगवान है और भक्ति सेवा है। भक्ति मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम जो कार्य करते हैं अपने मन से इंद्रियों से, उसे भक्ति कहते हैं। जैसा हमने पहले देखा शुद्ध अवस्था में आत्मा के स्तर पे भी हमारा दिव्य स्वरूप होता है और ये जो जड़ स्वरूप है ये उसी के ऊपर एक ढांचा है। आत्मा का अपना दिव्य स्वरूप है, दिव्य इंद्रियां हैं, दिव्य नेत्र हैं, दिव्य हाथ हैं, दिव्य कान हैं, दिव्य मन है, दिव्य बुद्धि है। जैसे भगवान के दिव्य स्वरूप है ऐसे ही आत्मा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारा अपना दिव्य स्वरूप है। अभी वो इस जड़ स्वरूप जड़ शरीर से ढका हुआ है, तो वर्तमान में हम अपने जड़ इंद्रियों से, जड़ मन से, जड़ बुद्धि से जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये सब इंद्रियां मन और बुद्धि आध्यात्मिक में परिवर्तित हो जाती हैं। जो हमने कल देखा जैसे अग्नि के अंदर लोहा रख दें तो लोहा अग्नि की तरह काम करने लगता है, तो भगवान की सेवा में जब हम अपनी जड़ इंद्रियों को लगाते हैं तो ये सब जड़ इंद्रियां आध्यात्मिक परिवर्तित होती हैं और हमारा जो वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट होता है, जिनसे हम भगवान की भक्ति सेवा दिव्य स्तर पे जारी रखते हैं और ये शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जाते हैं। तो मद भक्त यानी भगवान की सेवा। तो ये जानना पड़ेगा कि भगवत धाम में भगवान की सेवा कैसे होती है, वहां क्या क्या हो रहा है। भगवत धाम में हम जाएंगे, लक्ष्य जो हमारा है, तो जानकारी होनी चाहिए कि वहां जाकर के क्या करने वाले हैं। जैसे हमारे यहां अप्रेंटिस होता है, जब कोई आदमी नया नया आता है तो ट्रेनिंग उसकी होती है अप्रेंटिस की, पहले उसको सिखाया जाता है कि फिटर हो तो ये सब कार्य करना पड़ेगा, ये सीखो, ट्रेनिंग होती है, तब उसको जॉब पे रखा जाता है। उसी प्रकार से यहां जब है तब भक्तों के संरक्षण में रहते हुए शास्त्र के अनुरूप हमें ट्रेनिंग लेनी है कि भगवत धाम जाकर के भगवान की सेवा कैसे कैसे करेंगे, उसे मत भक्त भक्ति कहते हैं। तो वहां क्या क्या होता है, तो वो सोच मन में स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा, कोई शायद की जरूरत नहीं है। भगवान इसीलिए अवतरित होते हैं स्वयं बताने के लिए कि वहां क्या होता है। जैसे हम यहां से वीडियो देख लें कि वहां अमेरिका में ये हो रहा है तो हम जान जाते हैं कि अमेरिका में ये एक्टिविटीज हो रही हैं, इसी तरह से भगवान यहां खुद अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के साथ, अपने अंतरंग भक्तों के साथ, जो आध्यात्मिक जगत से भगवान के साथ आते हैं, पूरा ट्रुप हमको बताने के लिए कि भगवत धाम में क्या हो रहा है, निमंत्रण देने के लिए कि आप भी आओ, जुड़ो कृष्ण फैमिली में, कृष्ण परिवार में जुड़ो, जिसके हम वास्तव में सदस्य हैं, उसको छोड़कर के माया परिवार में जुड़े हुए हैं। ये भगवान हमको बुलाने के लिए आते हैं, अवतरित होते हैं, कि कितनी मधुर मेरे साथ रहना कितना आनंदमय है, क्यों नहीं तुम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से इस बकवास को छोड़कर के क्यों मेरे साथ आकर के नहीं रहते हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए, हम देख सकते हैं वृंदावन में क्या होता है, वही चीज आध्यात्मिक जगत में हो रही है। गोलोक धाम का एक प्रतिबिंब है इस समय जो वृंदावन है, जो वहां होता है वही क्रियाएं भगवान जब आते हैं तब प्रदर्शित करते हैं। तो वृंदावन में क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण आए, पूरा वृंदावन केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता था दिन रात, और किसी को और कोई ख्याल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, सबका एकमात्र एक ही जीवन का हेतु है, सबके प्राणनाथ हैं श्री कृष्ण। चाहे बच्चे हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गाय हो, चाहे पेड़ हो, सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही हेतु है, एक ही प्राण है श्री कृष्ण। खाते हैं तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कपड़े पहनते हैं तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ केवल एक ही केंद्र है भगवान को प्रसन्न करना। यह है आध्यात्मिक जगत की क्रियाएं, भगवत धाम की क्रियाएं। तो विशेष रूप से भगवत धाम में क्या होता है, नौ प्रकार से भगवान की भक्ति सेवा होती है, नव विधा भक्ति सेवा। वो कौन कौन सी है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भगवान की भक्ति सेवा निरंतर होती है, और उसी की ट्रेनिंग हमको लेनी है। इसका मतलब है मद भक्तः, अपना कर्म करो और जैसा हमने कल देखा समय निकालो, ये भक्ति की प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग, अप्रेंटिस कोर्स जो वहां जाए करना है उसका भी सब अभ्यास कीजिए। किस किस चीज का अभ्यास, इन नौ चीजों का अभ्यास, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो सबसे पहले है श्रवण और कीर्तन। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, यानी कि परम स्तर तक पहुंचने का मार्ग भी है, और परम स्तर पर पहुंचने के बाद भी वही क्रियाएं आगे होती हैं। अन्य मार्गों में साधन अलग है, साध्य अलग है, पर भक्ति साधन भी है, साध्य भी है। तो ये सब नवविधा भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, यानी इन नौ प्रकार की भक्ति सेवा करके हम भगवान के प्रति अपने अनुराग को बढ़ाएंगे, और उस अनुराग को प्राप्त करने पर इन्हीं नौ प्रकार से भगवान की सेवा प्रेम से करेंगे। तो भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। तो वर्तमान में हमारे लिए वो साधन है, अभी हम साध्य स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, ये साधन है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, हम सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, उनके भक्त हैं, भगवान के प्रति प्रेम वो हमारा स्वाभाविक लक्षण है। तो ये नवविधा भक्ति साधन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, ये जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेम पुमार तो महान, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार प्रयोजन है उससे पांचवा जो प्रयोजन पुमार्थ, इनसे महान पांचवा पंचम पुरुषार्थ जो है वो है प्रेम पुमार्थ महान, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जो परम लक्ष्य है जीवन का। जिसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है वही भगवत धाम जा सकता है, और इन नवविधा भक्ति से कृष्ण प्रेम जागृत करने का प्रयास है। तो कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा तरे बले प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे कहे काम। कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा को कृष्ण प्रेम कहते हैं, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को काम कहते हैं। इस भौतिक जगत में हम कहते हैं हमें किसी से प्रेम है, इस भौतिक जगत में किसी को किसी से प्रेम नहीं है, जो सब प्रेम के नाम पे चल रहा है वो सब केवल काम है, प्रेम केवल कृष्ण से होता है। यहां हर व्यक्ति को अल्टीमेटली अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की पड़ी है। हम किसी को मित्र बनाते हैं जब तक वो मित्र हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है, हम किसी की सेवा तभी तक करते हैं जब तक हमारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, केंद्र हमारी इंद्रियों का संतुष्टिकरण है, इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो काम है। प्रेम तो केवल कृष्ण के साथ किया जाता है। तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा प्रेम है, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम है। तो ये हम सभी जीवों के अंदर है, ये कोई नई चीज हमको खरीदनी नहीं है, नया अभ्यास नहीं करना है, ये हम सभी के अंदर है, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम उनके अंश हैं, सतत रूप से नित्य रूप से हम सभी के अंदर कृष्ण प्रेम है। पर अभी हम उसको ढक गया है, हम उसको भूल गए हैं, वो आवृत हो गया है माया के प्रभाव से, तो क्या करना है, इस आवरण को हटाना है। इसलिए कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कबू साध्य न है, श्रवणादि शुद्ध चित्त कर उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है ये कोई नया साध्य नहीं है, ये कोई नया लक्ष्य नहीं है जो हमें प्राप्त करना है, बल्कि क्या करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। श्रवण आदि से अपने चित्त को शुद्ध करके इसका उदय करना है। यह है हमारे अंदर ही है, पर श्रवण और कीर्तन ये नवविधा भक्ति से अपने इस आवरण को हटा करके इसे पुनः प्रकट करना है। तो प्रारंभ है भक्ति योग का, भक्ति का, ये श्रवण से। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नाम को सुनना, भगवान के संदेश इस भगवद गीता को सुनना, भगवान की लीलाओं को श्रीमद् भागवत में दी है उनको सुनना, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुनना, ये औषधि है, भव औषधि भागवतम में कहा गया है। इस भव सागर से निकलने की औषधि है, ये मेडिसिन है। ये भगवान के नाम दिव्य है, साधारण नाम नहीं है, इनमें पूरी आध्यात्मिक शक्ति है जो पुनः हमें स्मृति ला सकते हैं। इसे कहा गया है शृण्वतांस कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंत स्थ अभद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। जिसने, जो भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है, भगवान के नाम का श्रवण करता है, भगवान स्वयं उसके हृदय में जाकर सब गंदगी को साफ करते हैं, इस आवरण को, माया के आवरण को हटाते हैं। इसलिए सबसे सरलतम उपाय अपने हृदय को शुद्ध करने का, जिसकी वजह से हमें भगवान की विस्मृति हो गई है, जिसकी वजह से इस भव बंधन में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, उसे हटाने का, शुद्ध करने का सरलतम और कलयुग में एकमात्र उपाय है हरर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतरन्यथा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है हरि नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम या श्री राम, हरि नाम विष्णु तत्व, भगवान हरि का नाम वही एकमात्र उपाय है। नास्त्येव तीन बार जोर देकर कहा गया है, और कोई उपाय नहीं है। कृते तध्यायतो विष्णुम त्रेता यज्ञ मखई द्वापर्यम पर्यर्चका कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो कार्य सतयुग में ध्यान योग से संभव था, जो त्रेता युग में यज्ञों से संभव था, जो द्वापर युग में मंदिरों में अर्चना से संभव था, वह कलयुग में मात्र कृष्ण कीर्तन से संभव है। तो इस कलयुग में ध्यान योग की पद्धति नहीं बताई गई है, हठ योग इस युग के लिए नहीं है। वो अर्जुन ने 5000 वर्ष पहले ही रिजेक्ट कर दिया जब भगवान ने उसको बताया 6 अध्याय में कि ये मैं नहीं फॉलो कर सकता। तो वास्तव में यदि कोई वास्तव में सिद्धि चाहता है हठ योग में, तो इस कलयुग में इक्का दुक्का कोई कर सके, जन साधारण नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही यम नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है सबसे पहले ही। ऐसा नहीं कि हम जो चाहे करते रहे, सुबह 5 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए केंद्रित कर लिया किसी बिंदु के ऊपर और हमें योग सिद्धि हो जाएगी, ये भ्रम में है हम। ना तो बिंदु में ध्यान करना किसी शास्त्र में बताया है, परमात्मा के ऊपर ध्यान करना होता है अष्टांग योग के अंदर, ना कि किसी बिंदु के ऊपर ध्यान करना होता है। एनीवे, तो कलयुग के लिए जो रास्ता बताया गया है वो ये हरिनाम बताया गया है। भगवत धाम जाने के लिए तो यही रास्ता है एकमात्र, और कोई रास्ता नहीं है। अन्य जगह कहा गया है कलर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजत। ये कलयुग दोषों की निधि है, दोषों का सागर है, सब दोषी दोष हैं इस कलयुग में। क्या क्या दोष हैं? मंद सुमंद मतयो, सबकी मंद बुद्धि है, आयु बहुत कम है, अल्प आयु है, स्मरण शक्ति बहुत कम है, आध्यात्मिक रुचि तो है ही नहीं। हमने इतना प्रचार किया तो आप कुछ सज्जन आए हैं, किसी की रुचि नहीं है। और जिन थोड़े बहुत लोगों की रुचि होती है उन्हें भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ये कलयुग का लक्षण बताया गया है, इसलिए ये सब दोषों की निधि है। लेकिन अस्ति एको महान गुण, एक बहुत महान गुण है कलयुग के अंदर, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस भव सागर से मुक्ति केवल कृष्ण के कीर्तन से आसानी से संभव है। तो इसलिए ये हरिनाम ये बहुत महत्वपूर्ण और एकमात्र औषधि है इस भव सागर से निकलने के लिए। इसलिए भक्ति का जो प्रारंभ होता है वो ये श्रवण से होता है। कलि संतरना उपनिषद में बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये वचन कि कलयुग में सभी शास्त्रों में देख लिया गया कि कलयुग में कलि के कलमश को हटाने के लिए, नाश करने के लिए एकमात्र एक ही उपाय होगा, 16 शब्दों का बना ये महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोशकम, 16 शब्द का। तो यही हमारी आपसे विनती है, यही हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का संदेश है, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रारंभ किया हुआ आंदोलन है। ये कोई नया आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन की शुरुआत, इस संस्था की शुरुआत, वैसे तो सनातन धर्म है इससे इसकी कोई शुरुआत का मतलब ही नहीं है, ये ज्ञान ये पद्धति सनातन है। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, प्राचीन से प्राचीन तो समय से चली आ रही है भगवत पद्धति है, ये कोई नई चीज नहीं है। कलयुग में हरि नाम को जो प्रारंभ किया वो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व बंगाल में प्रारंभ किया। जो भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं कलयुग में भक्त के रूप में, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने शास्त्रों से लेकर के ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सरलता से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो उन्हीं की परंपरा में चले आ रहे श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कलकत्ता में से जिन्होंने प्रारंभ किया, प्रारंभ इस संस्था का न्यूयॉर्क से हुआ, इसी हेतु से यह प्रारंभ किया गया है कि यह हरे कृष्ण महामंत्र और यह भगवद गीता का शास्त्रों का संदेश जन जन तक पहुंचे, और इस हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत धाम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की सरलतम से सरलतम विधि सब लोग अपना सकें। इससे और सरल उपाय क्या हो सकता है? सिर के सिर को नीचे करके, पैर ऊपर करके करने के, तपस्या करने को नहीं, भगवान का कीर्तन करना है, कितना सरल है। प्रसाद लेना है, कितना सरल है। पर परिणाम परम सत्य है, परम लक्ष्य तक पहुंचना है। सरल है पर हम जा सकते हैं परम लक्ष्य तक। तो यही हमारी विनती है, यही इस कार्यक्रम को रखने का एकमात्र हेतु है कि हम ये भक्ति प्रारंभ करें। प्रारंभ होता है इस श्रवण और कीर्तन से, और अपने कर्म को धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाएं। इसी के आगे उस श्लोक में थोड़ा 2 मिनट लूंगा, आज अंतिम सत्र है, आप बोल सकता हूं और थोड़ा 5-10 मिनट। तो मत परमो मत भक्त संग वर्जित, असत संग का त्याग करने को भगवान बोल रहे हैं। जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग भगवान के भक्त नहीं हैं और ना भक्त बनना चाहते हैं, जो भौतिकवाद में लिप्त हैं, जो केवल खाओ पियो मौज करो यही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे लोगों से बहुत गहरा संबंध मत रखिए, क्योंकि वो असत संग है, उससे हमारी भक्ति विनश्यति, उससे भक्ति में रुकावट आती है। भक्तों का संग कीजिए, इसलिए संस्था बनी है कि आप आए और ऐसे भक्तों का संग कर सकें जिनके जीवन का यही लक्ष्य है कृष्ण परमो, कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना, जहां केवल भक्ति सेवा ही होती है, ऐसे लोगों का संग करने के लिए ही, संग प्राप्त करने के लिए संस्था है, जिसके अलग अलग केंद्र हैं, जिसकी अधिक जानकारी बाद में आप लोग हमसे ले सकते हैं। तो संग वर्जित, और क्या कह रहे हैं, निर्वैर, किसी से वैर मत रखो, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखो। तो ईर्ष्या द्वेष रखने का, न रखने का जो परम स्तर है वो है कि सभी का परम हित करो, परोपकार करो। भगवान ये चाहते हैं हम परोपकार करें, न केवल अपना उत्थान, अपने उत्थान में संतुष्ट न हो, बल्कि जो हमारे भाई हैं, जो सब भगवान की संतान हैं, उन सबका उत्थान करें, परोपकार करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइले जन्म यार, जन्म सार्थ करी कर परोपकार। जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है, मनुष्य का, वो तो और विशेष है, ये पुण्य भूमि है। भारत भूमि ते जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करो और परोपकार करो, दूसरों का जन्म सार्थक बनाओ, अपना जन्म सार्थक करो पहले और फिर दूसरों का जन्म सार्थक करो। तो ये परोपकार कैसे हो सकता है? तो परोपकार के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। शारीरिक स्तर पर परोपकार किया जा सकता है, जैसा जनसाधारण में होता है, शरीर की देखभाल, पर वो परम हित नहीं है। वो तो केवल जेल के अंदर अच्छे से रखने की बात है। सर्वश्रेष्ठ स्तर का परोपकार है जीव को भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाना। हम खुद भगवत धाम जाएं और अपने साथ सबको लेकर के चलें, ये जीव का परम हित है, ये परोपकार का सर्वश्रेष्ठ स्तर है। हमारा कोई मित्र जेल में है, हम कह सकते हैं तुम चिंता मत करो, जेल में शांति से रहो, हम तुम्हें खाने पीने को सब सामान लाके देंगे, तुम्हारे लिए टीवी लगवा देंगे, वीआईपी जेल में भिजवा देंगे। पर दूसरा मित्र आता है और उसको जेल से बाहर निकाल लेता है, उसके लिए प्रयास करता है, जेल से बाहर उसकी मुक्ति कराता है। किसका परोपकार श्रेष्ठ हुआ? उसका, जिसने जेल से बाहर निकलवा दिया। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में तो ये दुखालय मशाशन में है ही, कितना भी आप परोपकार भौतिक स्तर पर कर लीजिए, फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो रहेंगे ही। तो केवल उसी स्तर तक परोपकार करना परम परोपकार नहीं है, बल्कि इस जेल से बाहर निकलकर भगवत धाम लोगों को ले जाना, यह परोपकार का परम स्तर है। तो इस परोपकार को करने की बात चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। हमारा कोई मित्र है करोड़पति, उसका बच्चा अपने पिता से विद्रोह करके गली गली भटक रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। आप जाते हैं और उस अपने मित्र के लड़के को अपने घर ले आते हैं। आप खुद एक सामान्य आदमी हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, पिता को रहने दो, मेरे घर में आके रहो, मैं तुम्हें खाना दूंगा, पहनने को दूंगा। आप क्या देंगे? वो करोड़पति बाप की संतान है और आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, क्या खाने को दे पाएंगे? उससे अच्छा है आप दोबारे उसे उसके पिता के पास ले जाए, सुलह करवाए, पुनः उसके पिता के पास ले जाए, अपने आप वो सुखी हो जाएगा। तो हम सबके पिता तो परम ऐश्वर्य पूर्ण पूर्ण शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। तो हम क्यों कहें कि हम आपको परोपकार करेंगे, हम खाने को देंगे? नहीं, हम उन्हें तुम्हें भगवत धाम ले जाएंगे, तुम्हारे वास्तविक पिता के पास। हाँ, आवश्यकता है, वो सरकार का कार्य होता है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, सब सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान ने प्रबंध किया है, केवल हमारे मिसमैनेजमेंट से ऐसा है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि परम परोपकार यदि करना है तो सबको भगवत भक्ति का लाभ देना है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, जो कोई मेरे संदेश को दूसरों को देता है, उससे प्रिय ना तो मुझे कोई था, ना तो कोई है, ना तो कोई रहेगा। इसी हेतु से हम ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान का आदेश है कि इस संदेश को खुद भी अपने जीवन में अपनाओ और दूसरों को भी दो। यही काम आप भी सब कर सकते हैं, खुद अपने जीवन में अपनाइए इस भगवदगीता के उपदेश को, भक्ति सेवा प्रारंभ कीजिए, और कर रहे हैं तो और सुदृढ़ता से कीजिए, और दूसरों को भी इसका प्रचार कीजिए, तो भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान के संतुष्ट होने से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, जिसके संतुष्ट हैं सब संतुष्ट होंगे। तो ये हमारी विनम्र इच्छा है, यहां समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। अभी इसमें कुछ अनाउंसमेंट है। एक तो आप में से जो भी इस विषय में और आगे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। छह सत्र हुआ, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये तो प्रारंभिक है, प्रारंभ है, इस ये शुरुआत होनी चाहिए आगे जाने के लिए। तो और अधिक जानकारी के लिए एक रास्ता तो है कि हमारे पास पुस्तकें हैं, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि अभी क्या क्या आगे करना है। तो करने के लिए क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जप कीजिए, वो माला भी वहां पर उपलब्ध है। तो दिन में नियम बनाइए, समय निकालिए, कम से कम एक माला दो माला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को श्रवण कीर्तन शुरू कीजिए नियमित होकर के। दूसरा, नियमित रूप से भगवत गीता यथारूप का अध्ययन प्रारंभ कीजिए। शाम को आकर के टीवी को नहीं, ये भगवत गीता का अध्ययन सब कुटुंब के लोग मिलकर के ये भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, पहले सबसे पहले भगवत गीता पढ़ें, क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी है समझना हम कौन है, क्या है भगवान, क्या है। टीवी से ड्रामा देखना और ये सब पिक्चर देखना, मन सब बेकार होता है। हम फिर कहते हैं समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, कहां समय मिलेगा? तो समय मिलेगा जब वो टीवी बंद हो जाएगा, तब मिलेगा। तो वो टीवी को ना देख करके या धीरे धीरे कम करके कृपया करके भगवद गीता पढ़ना शुरू करें। नियम बनाए कि हर दिन एक श्लोक दो श्लोक यथारूप में से पढ़ना है। तीसरा, भगवान को भोग लगा करके ही खाएं। उसमें हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे कि भगवान को भोग लगाने का विधि क्या है, लेकिन वो पुस्तकें उपलब्ध हैं, कृष्ण भक्ति प्रबोधनी, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, साइंस क्या है, कि भगवान भी खाते हैं, वो केवल एक मन की मानने की बात नहीं है, पर वो समय की कमी होने की वजह से हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो वैसा करें और इस प्रकार से आगे जाएं। तो एक तो पुस्तकें आप लोग ले सकते हैं जिससे आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारे मंदिर भी है यहाँ संत नगर में, दिल्ली में, आपके पास में, ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश में, श्री श्री राधा पारसार्थी मंदिर, वहाँ का एड्रेस आप P32 में से ले सकते हैं श्रीमान आर के बंसल जी से, और वहाँ इस विषय में और जानकारी मिल सकती है। और ये जो कोर्स हमने किया है इसकी CD भी उपलब्ध हो जाएगी, अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद उसको बना करके हम भेज सकते हैं। तो आप में से जो चाहते हैं इस कोर्स की CD लेना, MP3 CD, एक CD के अंदर आएगा वो, और 30 rupees उसका कीमत रहेगा। तो कृपया करके आप लोग अपना नाम वहाँ लिखा सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पर भेज सकते हैं और फिर वो आप CD ले सकते हैं। तो इसके साथ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अभी प्रसाद की व्यवस्था है और आप बहुत से भी ने इसका इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग दिया है, और आप सभी लोग यहाँ आए हैं समय निकाल करके, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हमें मौका दिया आपने सेवा करने का आप सबकी, और आप सबके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न यदि किसी का रह गया, कोई समय कम है इसलिए हम प्रश्न नहीं पूछें, बाद में आप हमसे आकर के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।